सभी को भक्तिपूर्ण नमस्कार। श्री राम प्रभु के स्मरण से आज के इस विशेष भक्ति सत्संग का आरंभ करेंगे। सभी लोग साक्षात आनंद स्वरूप श्री रघुनंदन का भावपूर्ण स्मरण करेंगे एवं भक्ति प्रार्थना के रूप में उन्हें आर्तभाव से पुकारेंगे। हे राघव, हे प्रभु, आपका दिव्य स्मरण और आपका परम दिव्य संजीवन नाम हमारे मन को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। परमोच्च आनंद रूपी अमूल्य धरोहर जहां संग्रहित है, ऐसे एकमेव आप ही हो। हे भगवान, पतितों को पावन करने वाले, उनका उद्धार करने वाले केवल और केवल आप ही हो भगवान। हे प्रभु, आपके परम दिव्य नाम की महिमा का हम क्या वर्णन करें। आपका ये श्री राम नाम अर्थात दीन दुखियों पीड़ितों के लिए संजीवनी समान ही है। हे श्री राम, आपका दिव्य स्मरण रूपी अस्तित्व सदैव और सदैव के लिए हमारे हृदय में विराजमान होने दे। आपका परम दिव्य श्री राम नाम अखंड हमारे मुख में रहने दे। हे प्रभु, हम आपके अत्यंत सुकुमार परम मंगलमय और परम कल्याणकारी रूप का अंतःचक्षुओं से अखंड मंगल दर्शन ले सके। हे प्रभु, उस सुंदर चिन्मय रूप को अपने हृदय मंदिर में स्थापित कर उस पर हम निरंतर भक्ति अभिषेक कर सके। हमारी प्रत्येक श्वास में केवल और केवल आप ही समाहित हो प्रभु। ये परम दिव्य सुकोमल श्री रामचरण ही हमारे लिए सुंदर एवं अविनाशी परम धाम है, इसका भान हमें अखंड रहने दे। इसी भान के परिणाम स्वरूप श्री रामचरण धाम प्राप्ति की निरंतर लगन बनी रहने दे। हे रघुनाथ, हे रघुनंदन, कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। हे रघुराज, हे रघुत्तम, आपके श्री चरणों में हमें स्थान दीजिए। हे दयालु, आपके श्री चरणों में हमें स्थान दीजिए प्रभु। यही आपके सुकोमल श्री चरणों में भक्तिभावपूर्ण प्रार्थना है। साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के श्री रघुनाथ के श्री चरण कमलों में श्लोक रूपी भक्ति पुष्पों से पूजा अर्चना करेंगे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इस भक्ति सत्संग में आज हम साक्षात रघुकुल दीपक प्रभु श्री राम के अवतारी जीवन चरित्र का अवलोकन करेंगे। राजा दशरथ के चारों अलौकिक पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न सभी नानाविध गुणों से संपन्न थे। उनके जन्म के कारण अयोध्या में सर्वत्र हर्षोल्लास का वातावरण था। मंगल वाद्य बज रहे थे। नगरवासी एक दूसरे को राम जन्म के शुभ समाचार की बधाई देते हुए अपना आनंद व्यक्त कर रहे थे। भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनी मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इन शब्दों से संपूर्ण वातावरण निनादित था। प्रभु के जन्म का ये उत्सव केवल अयोध्या नगरी में ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में मनाया गया। गंधर्वों ने सप्तसुरों के तार छेड़े, सुमधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने दुमदुभिया बजाई तथा आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राम जन्म हुआ और उससे सृष्टि का संपूर्ण वातावरण ही बदल गया। सर्वत्र केवल आनंद और आनंद ही था। अयोध्या की जनता भी श्री रामचंद्र रूपी बाल भगवान के आगमन से अत्यंत आनंदित थी। वह अखंड श्री रामचंद्र का गुणगान कर रही थी और ऐसा करते करते प्रभु रामचंद्र के रूप में बाल भगवान बड़े होने लगे। श्री राम सहित अन्य तीन भाई भी बड़े होने लगे। लक्ष्मण जी तो अपने भ्राता रामचंद्र जी की छाया बनकर दिन रात साथ ही रहते थे और उधर भरत के साथ शत्रुघ्न उनकी छाया की भांति उनके साथ रहने लगे। लक्ष्मण के साथ विहार करने वाले श्री रामचंद्र अपनी मधुर बाल लीलाओं, बाल विनोद और तोतले बोलों से अपने माता पिता को आनंद देने लगे। राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां अपने चारों पुत्रों की बाल लीलाओं में पूरी तरह से रंग गए। संपूर्ण राजमहल बाल भगवान और उनके अनुजों के आसपास ही फेरे लेने लगा। जैसे जैसे श्री राम बड़े होने लगे वैसे वैसे उनके दैवीय सौंदर्य में अधिकाधिक निखार आने लगा। अब कुछ बड़े होने पर श्री राम का रूप कैसे दिखाई दे रहा था इसका भी हम अवलोकन करेंगे। श्यामवर्ण श्री राम अत्यंत सुंदर है। जो भी उन्हें देखता तुरंत उन्हें गोद में उठा लेता। इतने वे सभी के लाडले हैं। मस्तक पर काले घुंघराले केश, चौड़ा भाल प्रदेश और मुख पर सदैव मनमोहक स्मित विलस रहा है। काले घुंघराले केशों को कौशल्या माता ने बड़ी कुशलता से संवारा है। हाल ही में आए दो छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी अधरों में मोतियों समान शोभा दे रहे हैं। सीधी नासिका और माथे पर लगा तिलक उनकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। उनकी सुंदरता का वर्णन कौन कर सकेगा। माथे पर मोतियों से सजा हुए दैदीप्यमान मुकुट पर स्वर्णिम अश्वत्थ वृक्ष का पत्ता है। कानों में धारण किए गए कुंडलों की आभा उनके मुख का तेज बढ़ा रही है और उनके भरे भरे गाल अति रम्य है। बाल श्री राम के तोतले बोल हृदय को अपार सुख और शांति देने वाले हैं। व्याघ्र नाखून डालकर पिरोया हुआ मोतियों का हार श्री रामचंद्र के गले में शोभा दे रहा है। कमर में स्वर्ण मेखला है और उनके छोटे छोटे हाथों की कलाइयों में हस्तिदंती आभूषण है। भुजाओं पर बाजूबंद है और साथ ही उनके छोटे छोटे पैरों में छुन छुन नाद करती हुई घुंघरू वाली पाजेब है। पाजेब का कर्णमधुर नाद मन को भी मोह ले रहा है। श्री राम प्रभु ने ऐसे परम दिव्य आभूषण धारण किए हैं। उन्होंने पीले रंग का रेशमी झबला पहना है। उस पीत वर्ण से उनकी नील वर्ण की कांति अत्यंत शोभामान है। उनके पैरों के तलुए लाल कमल जैसे हैं। उनके नाखूनों की कांति मानो नील कमलों की पंखुड़ियों पर पड़ी ओस की बूंदों समान है। श्री राम के पैरों के तलों पर ध्वज, रेखा, अंकुश और वज्र ये शुभ चिन्ह है। श्री राम का वो सुंदर रूप किसी का भी मन मोह लेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। श्रुति और शेष के लिए भी इस सुंदर रूप का शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं। इस बाल रूप के सगुण साक्षात्कार का अनुभव करने वाला महान पुण्यात्मा ही हो सकता है। आनंद घन मोहातीत मन, बुद्धि एवं वाणी की वर्णन क्षमता से परे, साथ ही इंद्रियातीत प्रभु तो केवल राजा दशरथ और कौशल्या के परम प्रेम से आकर्षित होकर बाल लीलाएं कर रहे हैं। कौशल्या माता बाल राम को अपनी गोद में लेकर कभी उन्हें डोलाती है तो कभी पालने में डालकर हल्के हल्के झोंके देती है, तो कभी गोद में लेकर मेरा लाडला, मेरा लाल इत्यादि बोलती हुई बालराम का लाड करती है। वे राम प्रेम में इतनी मग्न हो जाती है कि कब रात बीत गई और कब दिन उदित हुआ इसका उन्हें भान भी नहीं रहता। पुत्र स्नेह से मोहित होकर वे बालराम के चरित्र का गुणगान करने लगती। जो ब्रह्म और जो परमात्मा सर्वव्यापी है, साथ ही माया मोह आदि बंधनों से मुक्त है, जो गुणातीत और जन्म रहित है, वही भगवान माता की प्रेम भक्ति से मोहित होकर उनकी गोद में बैठकर उन्हें परमानंद की अनुभूति कराते थे। इस विश्व के स्वामी, जगत के पालनहार प्रभु श्री राम इस प्रकार अयोध्या की प्रजा को अपनी बाल लीलाओं से आनंद प्रदान करते थे। वास्तव में जिन्हें साक्षात रघुनाथ जी के श्री चरणों के प्रति प्रेम है, वे ही प्रभु जी की दिव्य अवतारी लीलाओं के साक्षीदार बन सकते हैं। उन्हें ही ऐसी दुर्लभ गति प्राप्त होती है। यही इससे ध्यान में आता है। रघुपति से विमुख रहकर कोई यदि कोटि कोटि प्रयास करे, तब भी भव बंधन से मुक्त होने में वो समर्थ नहीं हो सकता। जो माया चराचर जीवों को स्वयं में उलझाती है, वह माया भी प्रभु से डरती है। उस माया को केवल अपनी भ्रुकुटी विलास से अर्थात दृष्टि से जो नचाते हैं, उन प्रभु को छोड़कर और किसका भजन करें। स्वयं को, स्वयं के अहंकार को, मैंपन को छोड़कर मन, कृति एवं वाणी से श्री राम प्रभु जी का भजन करने से वे रघुराज ही हम पर कृपा करते हैं। अयोध्या की प्रजा अत्यंत भाग्यशाली थी। उनकी श्री राम चरणों पर अपार निष्ठा थी और इसीलिए वो प्रजा श्री राम जी के दिव्य एवं परम आनंददायी श्री रामलीला की साक्षीदार बन गई। प्रभु श्री राम जी का हम सभी पर कृपा कटाक्ष होने से हमें भी उन दिव्य लीलाओं की आज यहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति लेने का शुभ अवसर मिल रहा है। अब तक के भक्ति सत्र द्वारा हम कितनी मात्रा में श्री राममय हो गए, हमारा अंतकरण, हमारा रोम रोम कितना श्री राममय हो गया, इसका कुछ क्षण आंखें बंद करके हम आत्म परीक्षण करेंगे। हृदय में प्रचंड मात्रा में कार्यरत हो रही श्री राम भक्ति की उन दिव्य भक्ति तरंगों का प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। वास्तव में माता कौसल्या को अपार सुख प्रदान करने वाली, परमानंद प्रदान करने वाली ये श्री रामलीला कितनी सुंदर, कितनी मधुर एवं मनोहर है। हम भी उनकी दिव्य लीलाओं में खो गए हैं। ऐसा लगता है कि भगवान की उन बाल लीलाओं को मानस अनुभव करते समय हमारा भी वात्सल्य भाव जागृत हुआ है। माता कौसल्या ने इन लीलाओं का प्रत्यक्ष नेत्रों से एवं मन से अनुभव किया है। इन सब दिव्य लीलाओं का अनुभव करते समय उनकी स्थिति कैसी बनी होगी, अब हम इसका अवलोकन करेंगे। श्री राम प्रभु की बाल लीलाओं की आनंदमय अनुभूति लेते समय कौसल्या माता का हृदय क्या कहता होगा, उसे सुनने का हम प्रयास करेंगे। अपने बच्चे की प्रभु श्री राम जी के बाल लीलाओं के कितने लाड लड़ाऊ, ऐसा कौसल्या माता को हुआ है। वे अत्यधिक आनंद से कहती है, तुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, मेरे प्रभु रामचंद्र जी ठुमक ठुमक कर चल रहे हैं और उनकी पंजानिया अर्थात बाजे बज रही है। मेरे श्री राम प्रसन्नता से किलकारियां मारते हुए धरती पर गिर जाते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। तब मैं उन्हें उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया करती हूं। शिशु रामचंद्र पर लगी धूल मिट्टी को मैं अपने आंचल से अत्यंत प्रेम से हटाती हूं। मेरे रामचंद्र पर मैंने अपना तन मन और प्राण न्यौछावर कर दिया है। बाल रूप में प्रभु अत्यंत मधुर वचनों से सभी को मोहित कर लेते हैं और उनके मधुर बोल सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता है। शिशु रामचंद्र जी के मुख पर सूर्य समान तेज है। बाल लीला करते हुए वे जब हंसते हैं तब वह तेज और अधिक बढ़ जाता है। श्री राम जी की बचपन की लीलाएं अत्यंत अलौकिक है। उनकी तुलना इस संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। श्याम वर्ण श्री रामचंद्र जी की दिव्य लीलाएं हमारे मन को मोह लेती है एवं प्रत्यक्ष त्रेता युग की दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली है। इस वर्णन का अनुभव लेते समय ऐसा लग रहा है मानो हम ही कौसल्या माता हो गए हैं। बाल प्रभु राम के पीछे पीछे दौड़कर हम उनकी दिव्य लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। श्याम वर्ण श्री रामचंद्र जी ने हमें भी ऐसी सुंदर अनुभूति प्रदान की। इस विषय में हम उनके कोमल श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अब तक द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाएं हमने सुनी है। आज भी वह दिव्य आनंदमय लीलाओं के स्मरण से हमारा मन आनंदित हो जाता है, श्री कृष्णमय हो जाता है। हमारे अंतर में गोपी भाव जागृत होता है, वैसा श्री राम के विषय में नहीं होता है। श्री राम जी का स्मरण करते ही सदैव शांत स्थिर ऐसा ही रूप आंखों के सामने आता है। परंतु नारायण ने इस श्री राम अवतार में भी अनेक अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं कर श्री कृष्ण की भांति ही सभी को आनंद दिया है और उसका सुंदर वर्णन तुलसीदास जी के रामचरित मानस में पाया जाता है। अब हम उस श्री राम लीलाओं का सुंदर वर्णन सुनकर उसकी आनंदमय प्रतीति लेंगे। एक बार सदैव की भांति कौसल्या माता ने बालक श्री राम को स्नान कराया। काजल तिलक इत्यादि विविध श्रृंगार कर उन्हें पालने में सुलाया, तदुपरांत स्वयं स्नान किया, अपने इष्ट देवता एवं कुल देवता की पूजा कर भगवान को नैवेद्य समर्पित किया। पश्चात किसी कारणवश वे रसोई घर में जाकर थोड़ी देर में ही पुनः पूजा घर में लौट आई। तब पूजा घर का दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गई। पूजा घर में मूर्ति के समक्ष रखा नैवेद्य स्वयं श्री राम खा रहे हैं। पालने में सुलाए श्री राम पूजा घर में कैसे पहुंचे? माता कौसल्या डर गई, वे दौड़ते हुए पालने के निकट पहुंची। परंतु श्री राम तो पालने में शांत सो गए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ, स्वयं का ही दृष्टिभ्रम होगा। इस विचार से वे पुनः पूजा घर में आई तो देखती है कि वास्तव में पूजा घर में साक्षात श्री राम ही नैवेद्य ग्रहण कर रहे हैं। अब तो कौसल्या माता के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ गई, मन का धीरज खोने लगा। यहां पूजा घर में श्री राम और वहां पालने में भी श्री राम, ऐसे दो बालक, ये कैसे संभव है? ये मेरी बुद्धि का भ्रम है अथवा कुछ और? ऐसे सोच के वे चिंतित हो गई। वे भयभीत होकर पूजा घर का वो दृश्य देख रही थी। अपनी जननी भय एवं चिंता से व्याकुल हो गई है, ये बात अंतर्यामी श्री राम प्रभु जी समझ गए और उन्होंने माता की ओर देखकर मधुर मनमोहक परंतु नटखट स्मित किया। कौसल्या माता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वे अधिक ही डर गई। माता की यह स्थिति देखकर प्रभु जी ने अपनी माया समेट ली और उस परम सौभाग्यशाली जननी के आगे उन्होंने अपना अलौकिक अखंड रूप अर्थात विराट विश्वरूप प्रकट किया। माता कौशल्या विस्फारित नेत्रों से भगवान का दिव्य अति तेजस्वी रूप देखने लगी। भगवान के तेज से उनके नेत्र बंद होने लगे। श्री राम जी का यह विराट रूप कैसा था? माता कौशल्या की भांति हमें भी इस दिव्य अनुभूति का प्रत्यक्ष साक्षीदार होने का परम भाग्य मिल रहा है। चलिए तो फिर हम भी उस दिव्य एवं अद्भुत क्षणों की प्रत्यक्ष अनुभूति लेंगे। माता कौशल्या विस्मित होकर बालक श्री राम प्रभु जी के भगवान के वो दिव्य विराट रूप को देखने लगी। श्री राम जी के विराट देहधारी रूप के प्रत्येक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बसे हैं। ऐसा कौशल्या माता ने देखा और ये देखकर वे अत्यधिक चकित हो गई। आगे उसने ऐसा देखा कि अनगिनत सूर्य अनगिनत चंद्र तथा देवादिदेव महादेव ब्रह्मदेव अनेक पर्वत सागर नदियां पृथ्वी एवं अरण्यवन उसी में है। काल गुणदोष स्वभाव इत्यादि उसी में है। पहले जो कभी सुना तक नहीं था वह सब भी उस विराट देहधारी श्री राम जी के देह में उन्होंने देखा। सर्व प्रकार से अति प्रबल माया भय से श्री राम प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ी दिखाई दी। उस मोह माया के बंधन में बंध कर विविध कर्म करने वाली स्वयं की देह भी उसने देखी एवं उसी के साथ इस मोह माया के बंधन से मुक्त करने वाली भक्ति भी देखी। ये सब देखने से कौशल्या माता की संपूर्ण देह रोमांचित हो उठी। वो तो निस्तब्ध हो गई। आखिर उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और वो विराट रूपधारी भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक हो गई। स्वयं की माता जी की ये संभ्रमित अवस्था देखकर भगवान ने उनका विराट देहधारी रूप समेट लिया एवं वे पुनः शिशु बन गए। अब कौशल्या माता की स्थिति ऐसी हो गई कि वह अकस्मात सामने खड़े विराट देही भगवान की स्तुति नहीं कर पाई। साक्षात जगत पिता को पुत्र माना ऐसा लगकर माता स्वयं को अपराधी समझने लगी। वे भयभीत हो गई। तदुपरांत श्री राम प्रभु जी ने जननी को विविध प्रकार से समझाया और कहा, हे माते, ये बात किसी को भी न बताएं, इसे गुप्त ही रखें। कौशल्य माता अब भी उस प्रसंग में उलझी हुई थी। वे पुनः पुनः हाथ जोड़कर भगवान को ही अपना पुत्र मानने के संदर्भ में पश्चाताप व्यक्त करने लगी। भगवान से विनती करने लगी, हे प्रभु, अब मुझे आपकी माया से दूर रखें, मुझे आप माया के इस बंधन से मुक्त करें और आपके श्री चरणों में मेरी अचल भक्ति सदैव दृढ़ रहने दे। भगवान ने मधुर स्मित हास्य किया और उनको अचल भक्ति का आशीर्वाद दिया। परंतु कौसल्या माता को मोह माया से त्वरित मुक्त करने का वो उचित समय ही नहीं था, क्योंकि भगवान को इस अवतार में अभी बहुत से कार्य संपन्न करने थे। इसलिए उनकी माया का पर्दा सभी पर होना आवश्यक था। इसलिए भगवान ने पुनः धीरे से उन पर माया का पर्दा डाल दिया। उसी क्षण उनको दिखाई देने वाले भगवान के दो रूप अदृश्य हो गए। अब उन्हें केवल पालने में सोए हुए अतीव सुंदर रामचंद्र जी ही दिखाई दे रहे थे। भगवान द्वारा डाले माया के आवरण के कारण स्वयं का पुत्र ही भगवान है, इस बात का उन्हें विस्मरण हो गया। वे अपने पुत्र के रूप में उसकी ओर अनिमेश दृष्टि से देखने लगी। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपने बाल रूप में विविध लीलाओं द्वारा हमें अपने अवतार की प्रचिति दी। विविध प्रकार की बाल लीलाओं से अपने माता पिता को, दास दासियों को और अपने भक्तों को परमानंद दिया। ऐसे ही कुछ समय बीतने पर वे चारों भाई कुछ बड़े हो गए। परम मनोहर चरित्र लीला करते हुए वे चारों सुकुमार राजपुत्र अब अपने नन्हे नन्हे पैरों से चलने लगे। जो प्रभु तन मन और वाणी के परे है वे राजा दशरथ के आंगन में खेलने लगे। राजभवन के आंगन में श्री राम को हिरण के बच्चे के पीछे पीछे रेंगते देख महाराज दशरथ और कौसल्या अत्यंत आनंदित होते थे। जब महाराज दशरथ भोजन के लिए बैठते तब वे हे राघव तुम हमारे पास आओ ऐसे कहते हुए अत्यधिक हर्ष और प्रेम से श्री राम को बार बार बुलाते। परंतु खेलने में मग्न प्रभु अपने बाल साथियों को छोड़कर आने को ही तैयार नहीं होते। जब श्री राम नहीं आते तो दशरथ जी कौशल्या से कहते उसे ले आओ। तब कौशल्या जी उन्हें लेने जाती है, परंतु माता को अपनी ओर आते देख प्रभु ठुमक ठुमक कर और दूर जाने लगते हैं। वेद जिनका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं, साक्षात देवादिदेव शिवजी भी जिनकी था जिनका अंत न पा सके उन प्रभु को पकड़ने के लिए माता कौशल्या हठपूर्वक दौड़ती है, परंतु वे उन्हें नहीं पकड़ पाती। मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते माँ थक गई है। ये देख प्रभु स्वयं ही हंसते हंसते समीप आ जाते हैं और मिट्टी से सने हाथों से एक आध निवाला खाकर पुनः खेलने भाग जाते हैं। इस प्रकार आनंदगण और विश्व को आनंद देने वाले भगवान श्री राम ने मनभावन मायामयी बाल रूप धारण कर दशरथ और कौशल्या को अपरंपार आनंदित किया। कुछ समय व्यतीत होने पर चारों भाइयों ने कुमार अवस्था में प्रवेश किया और वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। कुछ ही समय में प्रभु राम ने सर्व विद्याएं प्राप्त कर ली। चारों वेद जिनकी श्वास है ऐसे श्रीहरि वेदों का पठन कर रहे हैं, ये उनकी एक लीला ही है। विद्या नम्रता गुण और शील में निपुण चारों सुकुमारों की अब क्षत्रियों की शौर्य लीलाओं में रुचि बढ़ने लगी और उनके हाथों में धनुष बाण शोभा देने लगे। उनका वो मनोहर रूप देखकर संपूर्ण चराचर उनके मोहपाश में बंध गया। वे चारों भाई जहां से भी गुजरते, जिस जिस मार्ग से विहार के लिए जाते, आसपास के सभी नर नारी अचंभित होकर उन्हें एकटक निहारते ही रहते। तब तक निहारते जब तक वे उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो जाते। अयोध्या नगरी का प्रत्येक वासी, फिर वो चाहे पुरुष हो अथवा महिला, बालक हो या वृद्ध, सभी को श्री राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। प्रभु श्री रामचंद्र माता पिता की आज्ञा का पालन करते। प्रातः उठकर माता पिता और गुरु को वंदन करते। वेद, इतिहास, पुराण आदि का मन लगाकर श्रवण करते और फिर अपने अनुजों को भी समझाते। वे अपने अनुजों और बाल साथियों के साथ ही भोजन करते। प्रतिदिन राजा दशरथ की आज्ञा लेकर ही नगर के कामकाज करते और उनका ध्येय सदैव यही रहता था कि अयोध्यावासी सुखी हो, उनका कल्याण हो, और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे प्रयत्नरत रहते। प्रभु रघुनाथ का अनूठा चरित्र, उनके जन कल्याण की भावना देखकर राजा दशरथ को अत्यंत हर्ष और संतोष होता था। इस प्रकार राग, द्वेष इत्यादि विकार रहित परमात्मा मानव अवतार धारण कर भूलोक के मनुष्य जीवों के समान ही आचरण करते हुए सर्व कार्य कर रहे थे। जो ब्रह्म, व्यापक, पूर्ण, जन्मादि रहित, निर्गुण, नाम रहित और रूप रहित है, वह ब्रह्म भक्तों के लिए मनुष्य बनकर नाना प्रकार की अनुपम चरित्र लीला कर रहे थे। आज भी भारतवर्ष में प्रत्येक जनमानस पर सर्वाधिक प्रभाव जिसका है, ऐसे नर रत्न है कौसल्यानंदन, रघुकुल तिलक, दाशरथी राम, सर्व भक्तों के भगवान श्री राम और प्रजा के आदर्श राजा प्रभु श्री रामचंद्र। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र का चरित्र कितना आदर्श, वंदनीय और पूजनीय है। प्रभु श्री राम का नाम इस देश के जन जीवन में कितनी गहराई तक अंकित है वो अब देखेंगे। हमारी आत्मा के साथ भी राम जुड़ा है। हम अपने हृदय के चैतन्य को आत्माराम कहते हैं। आज भी ग्रामीण भाग में परस्पर अभिवादन करते हुए राम राम कहते हैं। अचूक औषधि उपचार को हम रामबाण उपाय की संज्ञा देकर गौरवान्वित करते हैं। राम नाम से पत्थर तैरते हैं, यह हमारी श्रद्धा है। सबसे उत्तम और आदर्श राज्य कौन सा है? तो वह है राम राज्य। यहां भी हमें राम का ही स्मरण होता है और इस प्रकार हमारा संपूर्ण विश्व ही राममय है। साक्षात देवादिदेव महादेव, जो साक्षात श्री नारायण के अर्थात श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त है, वो रामचरित्र के विषय में क्या बताते हैं? रामचरित्र शतकोटि अर्थात अपार है। वेद और सरस्वती शारदा भी उनका समग्र चरित्र वर्णन करने में असमर्थ है। राम तो अनंत है, अनंत गुणों के खान है। उनका जन्म कर्म और उनके नाम भी अनंत, अगणित और असंख्य है। वर्षा की बूंदे अथवा पृथ्वी की मिट्टी के कण एक बार गिने जा सकते हैं। परंतु रघुपति के चरित्र का वर्णन करना संभव नहीं। जिसे भवसागर के पार जाने की इच्छा है उनके लिए यह रामकथा ही भवसागर पार कराने वाली नौका है। ये निर्मल रामकथा प्रत्यक्ष श्री रामचरणों की प्राप्ति करने वाली है। साक्षात हरिपद अर्थात श्री रामचरणों की प्राप्ति कराने वाली रामकथा के भक्तिपूर्ण श्रवण से ही अविनाशी भक्ति की प्राप्ति होती है। धन्य है हमारे भाग्य, धन्य है। वास्तव में आज हम कृतार्थ हो गए। हमें प्रभु श्री रामचंद्र के भव भय हरण करने वाले गुण, उनके परम आनंददायी चरित्र श्रवण करने का परम सुंदर अवसर मिला है। इसके लिए हम प्रभु के पावन श्री चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और इसके साथ ही उन्हें आर्तता से प्रार्थना करेंगे। हे कृपाधाम, आपकी कृपा से ही हम कृतार्थ हो गए, हम धन्य हो गए प्रभु। अब आपके अतिरिक्त अन्य कोई मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र, आप ही साक्षात सच्चिदानंद घन प्रभु है। हे नाथ, आप ही हम पर प्रत्यक्ष रघुवीर कथारूपी अमृत का वर्षाव कर रहे हैं। कर्ण रूपी अधरों से उनका प्राशन करके अब भी हमारा मन तृप्त नहीं हुआ है, हमारी तृष्णा शांत नहीं हुई है। हे राम, हे प्रभु, हमें ऐसा ही परम दिव्य अवसर पुनः पुनः प्राप्त होने दे, पुनः पुनः प्राप्त होने दे। हे श्री राम प्रभु, हे श्री रामचंद्र, हमारे मन को सदैव आपके श्री चरण कमलों का स्मरण होने दे। हे श्री रामचंद्र, वाणी से हम सदैव आपकी दिव्य लीलाओं का स्तुतिगान करते रहे। हे श्री रामचंद्र, हमारा मस्तक सदैव आपके श्री चरण कमलों पर शरणागति से झुका रहे। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। आज के इस राममय और राम के रंग में रंगने वाले भक्ति सत्संग की समाप्ति के पूर्व प्रभु श्री राम हमें पुनः श्री राममय करने वाले हैं। हम सब अपना शरीर, शरीर का रोम रोम, मन, बुद्धि, चित्त एवं पंच प्राण, इन सभी के साथ संपूर्ण रूप से श्री राममय हो जाएंगे, श्री राम के रंग में रंग जाएंगे। चलिए श्री राममय होकर श्री राम स्तुति करेंगे। साक्षात भगवान शिव द्वारा की गई राम स्तुति रामचरित मानस के माध्यम से संत तुलसीदास जी ने सुंदर भक्ति शब्दों के दिव्य पुष्प स्तुति माला में पिरोए हैं। हम सब इस सत्संग के रूप में वो अनुपम मनोहारी स्तुति माला प्रभु श्री राम के परम पावन सुकोमल श्री चरणों में समर्पित करेंगे। हमारे हृदय मंदिर में बसने वाले श्री राम को ये दिव्य भक्तिमय स्तुति माला समर्पित करने पर उसकी मनभावन दैवीय सुगंध हमारे हृदय मंदिर में भी बस गई है, इसकी भी अनुभूति लेंगे। जय राम रमा रमनम समनम भव ताप भयाकुल पाही जनम अवधेश सुरेश रमेश बीबो शरणागत मागत पाही प्रभो। हे राम, हे रमारमण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण रूपी ताप का नाश करने वाले प्रभो, आपकी जय जयकार हो। जय जयकार हो रामा, जय जयकार हो। भव ताप के भय से व्याकुल हम सेवकों की रक्षा करो। हे भगवान, हे अयोध्यापति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, हम संपूर्ण शरणागति से आपसे यही याचना करते हैं, हमारी रक्षा करें, हम पर कृपा करें रघुनाथ, कृपा करें। हे महासामर्थ्यशाली श्री राम, 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश आपने ही किया। रावण वध करके पृथ्वी के दैत्यों का, समस्त पापियों का, महारोगों और महाकष्टों का निवारण आपने ही किया है। हे श्री राम, आपने प्रचंड शक्तिशाली बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से राक्षस समूह का विनाश किया है। हे प्रभु राम, इसी प्रकार आपके इस दिव्य तेज से हमारे भीतर के सभी कुविचार विकार रूपी मलिनता नष्ट करें। हे प्रभु, हमारे मन पर से पापों का भार हल्का करें, हमारा मन शुद्ध और पावन करें। हे राम, हमारा मन पावन करें। हे श्री रघुवीर, आप भूमंडल के अत्यंत परम दिव्य आभूषण हैं। आप तो साक्षात कोदंडधारी अर्थात श्रेष्ठ धनुष बाण और तरकस धारण किए हुए हैं। मद मोह और आसक्ति रूपी अंधकार का नाश करने वाले तेजोमय सूर्य हैं। हे सूर्य वंश में जन्म लेने वाले प्रभु, आप ही साक्षात सूर्य नारायण हैं। हे तेज पुंज श्री राम, आपके सूर्य समान तेज से आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को भस्मसात कर दे। हे महाप्रतापी, समस्त पाप ताप का हरण करने वाले श्री हरि, हम अबोध अनाथ जीवों की रक्षा करें। हे प्रभु, हे श्री रघुवीर, रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। हे प्रभु श्री राम, आपके अत्यंत सुंदर श्री चरण कमलों पर प्रीति न करने वाले जो जीव है, वो सदैव ही अत्यंत दीन दुखी और उदास रहते हैं। जो अभागा आपके चरण कमलों का महत्व नहीं समझ पाया, उसका जीवन तो व्यर्थ है। हे रघुवीर, हे रघुनाथ, जिन सौभाग्यशाली जीवों ने आपकी महिमा जान ली, जिन्होंने आपकी दिव्य आनंददायी लीला और आपकी कथा का आधार लिया, उनके जीवन में आपके अतिरिक्त और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। हे रघुनंदन, हमें भी ऐसा ही बनाए। हे रघुनंदन, आपके परम दिव्य परम चैतन्यदायी श्री चरणों का और आपके परम दिव्य मनमोहक रूप का स्मरण हमारे हृदय से सदैव होने दे। हमें अत्यंत प्रेमपूर्वक निर्मल पवित्र शुद्ध हृदय से आपके श्री चरण कमलों की निरंतर सेवा का अवसर दे। हे रघुनंदन, आपके स्मरण में और आपके श्री चरणों की सेवा में हमें परमानंद मिले, यही आपसे अत्यंत भावपूर्ण याचना है। मुनि जनों के मन रूपी कमल पर भक्ति रूपी मकरंद चकने के लिए आने वाले हे भ्रमर रूपी ईश्वर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर, हम आपको भजते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपकी संपूर्ण शरण आए हैं। हे हरि, हम आपके दिव्य और परम पुण्यदायक नाम का जप करते हैं और आपको भावपूर्ण वंदन करते हैं, क्योंकि आप ही जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि है। हे आत्मा रामा, आप जैसे मुनि जनों के हृदय कमल पर नित्य वास करते हैं, उसी प्रकार हमारे भी हृदय कमल पर आप नित्य वास करें। प्रभु हृदय कमल पर नित्य वास करें। हे प्रभु, आप गुण शील और कृपा के परमोच्च स्थान हैं। आप तो साक्षात लक्ष्मीपति हैं। हम आपको अखंड नमन करते हैं। हे रघुनंदन, आप हमारे जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। सप्त महासागरों से घिरी पृथ्वी का और अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करने वाले हे ब्रह्मांडधीश, आपकी कृपालु और उद्धारक दृष्टि हम पर भी डालने की कृपा करें। हे प्रभु, हे लक्ष्मीपति, अपने कृपा कटाक्ष से हमारा उद्धार करें। प्रभु हमारा उद्धार करें। हे राम, हे रघुनाथ, हे रघुत्तम, हम आपके श्री चरणों में पुनः पुनः वरदान मांगते हैं। हमें आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके परम भक्तों का सत्संग सदैव प्राप्त हो। हे राम, हे रघुनाथ, हे लक्ष्मीपते, हे रमापति, हमें ऐसा वर दे। प्रभु हमें ऐसा वर दे, हमें ऐसा वर दे। भगवान की कृपा से ये दिव्य भक्ति सत्संग संपन्न हुआ, इसलिए हम भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।